नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के इस अधिक मास के उपलक्ष्य में आयोजित किए हुए हरि कथा सप्ताह के चौथे दिन आप सबका स्वागत है। आज अधिक मास भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि है और मंगलवार का दिन है 21 अगस्त 2012। तो कल हमने भीष्मदेव के तिरुभाव के विषय में चर्चा की, उसमें एक प्रश्न आखिर में आया था तो सबके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। तो प्रश्न ये था कि भीष्मदेव के सामने स्वयं भगवान उपस्थित थे, फिर भी उन्हें उत्तरायण तक क्यों इंतज़ार करना पड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सबसे पहले हमने कहा था कि भीष्मदेव का गौरव बढ़ाने के लिए ही भगवान ने युधिष्ठिर की सांत्वना नहीं की। युधिष्ठिर बहुत दुखी थे और केवल भीष्मदेव का गौरव बढ़ाने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव के पास लेके गए। उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान भीष्मदेव का गौरव उच्च सीमा तक बढ़ाना चाहते थे, इसलिए विश्व के हर प्रकार के लोगों के लिए वो एक आदर्श तिरुभाव बने, इसलिए भगवान ने उत्तरायण का इंतज़ार किया। जैसे कि इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग योगी होते हैं, कुछ लोग कर्मकांडी होते हैं, और कर्मकांड के हिसाब से उत्तरायण में शरीर छोड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वैष्णव शास्त्रों के अनुसार अंतकाले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, किसी भी आयन में, दक्षिण आयन में, उत्तरायण में, अगर भगवान की स्मृति होते हुए अगर कोई शरीर छोड़ता है तो भगवत धाम चला जाता है। लेकिन लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरायण में शरीर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान ने भीष्मदेव को वैष्णव तरीके से सबसे श्रेष्ठ तरीके से तिरुभाव होने दिया और लौकिक तरीके से भी उनको सर्वश्रेष्ठ तिरुभाव होने के लिए सहायता दी। तो वो हर दृष्टि से, लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टि से, भीष्मदेव को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उनका गौरव बढ़ाने के लिए उन्होंने 56 दिन तक पहले तो उनसे कथा बुलवाई, हाँ, उन्होंने सब उपदेश किया अलग अलग प्रकार का, दिव्य उपदेश जो महाभारत के भीष्म खंड में आता है, अंत में युद्ध पर्व के बाद में विस्तार में दिया गया। और वो उनका गौरव भी था क्योंकि उन्होंने उस अवस्था में भी भगवान से वरदान प्राप्त करके अंतिम क्षण में सब ज्ञान युधिष्ठिर को दे दिया और फिर भगवान के समक्ष अपना शरीर त्याग दिया। एक और बात मुझे कल थोड़ा विस्तार में बताने की इच्छा थी वो रह गई, वो ये है कि जब रणभूमि में शर पंजर में लेटे हुए भीष्मदेव एकाग्र होकर भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, उसी समय भगवान भी एकाग्र होकर उनका ध्यान कर रहे थे। आपने सुना ना कल, हमारे लिए बहुत ही आश्वस्त करने वाली बात है ये जो घटना है, ये हमारे लिए इट्स अ वेरी ग्रेट होपफुल सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि इससे हमें विश्वास उत्पन्न होता है कि अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो वो हमारा ध्यान करेंगे, अगर हम गहराई से उनका ध्यान करेंगे तो वो भी गहराई से अपना ध्यान करेंगे, अगर हम आंखों में अश्रु लेकर भाव विभोर होकर उनका ध्यान करेंगे तो वो भी रोमांच खड़े होकर गदगद होकर, हाँ जैसे कोई हवा के बिना कोई ज्योति जो होती है ना वो हिलती नहीं है, ऐसे स्थिर होकर एकाग्र होकर जिस तरह से भीष्म का ध्यान कर रहे थे वैसे हमारा भी ध्यान करेंगे। तो बाजी किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हाँ, बॉल इज इन योर कोर्ट। भगवान तो हमेशा आतुर रहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो जिस प्रकार से हम भगवान को प्रस्तुत, जिस प्रकार से हम भगवान को अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार से भगवान हमें अपने आप को अपनी तरफ प्रस्तुत करते हैं। तो हमें चेतना हमारी परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। भगवान तो बड़े आतुर हैं, ऐसे कहते हैं कि जितना हमें गौलोक, एक मिनट दो मिनट जस्ट लेट इट गेट सेटल डाउन, तो ये उसके सामने ना जगह छोड़ दीजिए, कोई सामने बैठा ना मत उसके सामने, तो फीडबैक आता है। डोंट लेट एनीबडी सिट इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके सेटल फाइन। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ लिंक टूट गया। ओके तो हाँ, चेतना परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ये जीवन जो है ये चेतना परिवर्तन के लिए दिया गया है, और जब हमारी चेतना भगवान के लिए अनुकूल हो जाती है, उनकी स्मृति हमारे जीवन का प्रमुख अंग बन जाती है, तो भगवान के भी जीवन में हमारी स्मृति प्रधान अंग हो जाती है। इसलिए जब ऐसे कहते हैं कि जब हम भगवान को अपने जीवन में प्रथम प्राधान्य क्रम में रखेंगे, वी कीप हिम एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर वो हमें भी अपने उनके दृष्टि से प्रथम प्राधान्य क्रम में रखेंगे। तो वी हैव टू फर्स्ट चूज टू कीप कृष्णा ऑन द फर्स्ट लिस्ट ऑन प्रायोरिटी, फिर वो उनके जीवन में हम प्रायोरिटी हो जाएंगे। उसमें एक छोटी सी एक मुझे एक SMS आया था, बहुत सुंदर SMS आया था, ध्यान से सुनिए आपको भी काम आएगा कभी आगे। SMS ये था कि भगवान कह रहे हैं इस दुनिया के बंदे को, कह रहे हैं तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में। अगर तू अपने काम में व्यस्त है तो मैं मेरे धाम में रहूंगा, लेकिन अगर तू मेरे धाम में तो मैं तेरे काम में। ऐसा है कि जो उनका हो जाता है, उनका क्षेम कुशल कष्ट चिंता सब भगवान की हो जाती है, भगवान सब ले लेते हैं उनकी चिंताएं। तो हम अपनी चिंता के पीछे लगते हैं, स्वार्थ के पीछे लगते हैं, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, जीते रहो आराम से। लेकिन जब भगवान का ध्यान, भगवान की सेवा हम जीवन में प्रधान मानते हैं, हमारी सारी हमारा सारा चिंताएं, सारी कसौटियां, सारी परीक्षाएं, सारे क्लेश सब भगवान अपने जिम्मे ले लेते हैं और उसको सुधार भी देते हैं ठीक से। इसलिए इस जीवन में हमें अपने आप को भीष्मदेव की तरह भगवान को अर्पण करना चाहिए। भीष्मदेव का महात्म्य क्या है कि भीष्मदेव ने ये जानते हुए कि वो परास्त हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, फिर भी ये भगवान की इच्छा थी कि ये साबित करें कि इतने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति विश्व के होने पर भी असत्य का पक्ष लेने पर उनका सर्वनाश होगा, ये भगवान को साबित करना था। और भीष्म के बिना ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण वो किसी का नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने भीष्मदेव को भी अपनी इच्छा से विपक्ष में रखा और उनका सर्वनाश होने दिया। लौकिक दृष्टि से उनका सर्वनाश हो गया, पारलौकिक दृष्टि से वो भगवान के धाम में चले गए। तो हर एक घटना का एक दृष्टिकोण होता है। अगर आप लौकिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप बोलेंगे भीम तो भीष्मदेव तो नष्ट हो गए, लेकिन भगवान की दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, वैष्णव के दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भगवान की दिव्य लीला है अपने भक्त का गौरव करने की। तो विपक्ष में होने पर भी ऐसा प्रेम का आदान प्रदान किया उन्होंने उनके साथ में रणभूमि में, जो आज तक इतिहास में कहीं देखा नहीं गया है। ऐसा अनोखा आदान प्रदान भावनाओं का, प्रेम का, युद्ध भूमि पर, ऐसे भूमि पर जहाँ पर खून खराबा होता है, खून गिरता है, लहू गिरता है, उस जगह पर भगवान अपना परम प्रेम अपने भक्त को शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र क्रिया में दिखा रहे हैं, मतलब क्षत्रिय के कार्य में दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम जब बगीचे में जाएंगे तो प्रेम दिखा सकते हैं, युद्ध भूमि पर जहाँ पर कोलाहल होता है, भयंकर घटनाएं होती है, मृत्यु होता है, उस जगह पर किस अनोखे तरीके से भगवान अपने भक्त के ऊपर प्रेम दिखा सकते हैं, क्योंकि तो भगवान तो भगवान है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ही इज ऑटोक्रैट, वो क्या नहीं कर सकते हैं। अगर वो कुछ ऐसा चीज़ नहीं कर सकते हैं तो वो भगवान नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं तो वही भगवान है। तो ये बहुत सुंदर बात हमने कल नहीं कही, आज दोबारा कही। तो आज के इस कथा में हम गजेंद्र मोक्ष की कथा करेंगे। ये भागवतम की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष कथा है। तो इस कथा का जो वातावरण है तो उसको हम पढ़ेंगे कि हम कौन से लोकेशन में जा रहे हैं, सेटिंग द सीन। तो सीन ऐसा है कि एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, बहुत दिव्य जगह पर है वो, और त्रिकुट यानी तीन पर्वत की चोटियाँ, कूट यानी चोटी। तो वहाँ पर 10,000 योजन ऊंचे ऐसी तीन पर्वत की चोटियाँ थी, मतलब एक योजन होता है 2 कोस का, एक कोस होता है 2.25 माइल का, तो करीब करीब 8 माइल का एक होता है योजन। 10,000 योजन मतलब 80,000 माइल हो गए ना, 80,000 माइल्स आकाश में ऊंचा, ऐसे तीन चोटियाँ, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की, ऐसे पर्वत थे वो। उसके कदमों में क्षीर सागर था और क्षीर सागर की लहरों से हमेशा टकराते हुए उस पर्वत के तल पे हमेशा रत्न उत्पन्न हुआ करते थे। और उस जगह पर स्वर्गलोक के यानी कि सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सरा, ये सब लोग वहाँ पर सुख प्राप्त करने के लिए आते थे, क्रीड़ा करने के लिए, सुख की क्रीड़ा। और वहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर उपवन बना के रखे थे, जहाँ पर देवता लोग आकर आनंद मनाते थे, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी वहाँ पर कुंजरव करते थे, इस चक्रवाक, करंदव, बगुला, मोर, जल के पक्षी, ऐसे वहाँ पर सुंदर सुंदर तालाब थे जिसके किनारे में रत्न लगे हुए थे, जिसका पानी स्फटिक जैसा स्वच्छ था। और वहाँ पर वरुण देव का एक विशेष ऋतुमत नाम का तालाब था जो उसने अपने आनंद के लिए मेंटेन करके रखा। तो वरुण देव के इस तालाब में हमेशा वो अपनी पत्नियों को, सके संबंधियों को लेके सुख प्राप्त करने के लिए आते थे। वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ सुंदर सुंदर आवाज़ में कुंजरव करती थी और उस जल में मछलियाँ, कछुआ आकर आनंद लेते थे, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कमल खिला करते थे। और ऐसे सुंदर वरुण के ऋतुमत नाम के तालाब में एक दिन एक हाथियों का राजा गजेंद्र अपने परिवार को और अपनी पत्नियों को लेकर आता है। इसका छोटा सा इतिहास ऐसा है, पहले ही बता देते हैं आपको, कि पूर्व जन्म में ये हाथी राजा इंद्रदुम्न था और राजा इंद्रदुम्न बहुत बड़े राजऋषि थे, भगवान के बड़े भक्त थे वो, और यथावकाश 50 साल मतलब आधी जिंदगी गृहस्थ आश्रम पूरा करने के बाद, राज्य कारबार अच्छी तरह से करने के बाद, सक्षम हाथों में राज्य सौंपकर राजा इंद्रदुम्न जो है विरक्त हो जाते हैं और पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ पर तपस्या करते हैं, और तपस्या करके विरक्त होकर तपस्या जब करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो उसमें वो इतनी परमोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं कि हमेशा वो अधिकतर तुरिया अवस्था में रहते थे, मतलब एनग्रॉस्ड इन ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन। तो एक दिन ऐसे ही वो ध्यान लगाकर दिव्य अवस्था में थे, भगवान के ध्यान में लीन थे, शरीर का शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे, कोई भान नहीं था उनको। उस समय अगस्ती मुनि वहाँ पर आते हैं अपने हजारों शिष्यों को लेकर, और जब वो आते हैं अगस्त्य मुनि तो ये तुरियावस्था में है, ये तो होश में नहीं है, तो उनको पुकारते हैं, वो दो तीन बार पुकारते तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उनको। जैसे हुआ था ना परीक्षित महाराज का, वो भी गए शमिक ऋषि को, उन्होंने पुकारा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। तो अगस्त्य मुनि को लगा कि अरे मैं तो अगस्त्य मुनि हूँ, ब्रह्म ऋषि हूँ, सप्त ऋषियों में से एक हूँ, तो इस तपस्वी को आदर करना चाहिए, मेरा स्वागत करना चाहिए, कम से कम जलपान आसन देना चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही स्थिति में वो उस राजा इंद्रदुम्न जो तपस्वी रूप में वहाँ बैठे थे उनको शाप देते हैं कि तू इतना मंद मंद स्थिति में बैठा हुआ है, मंद बुद्धि की स्थिति में, तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, प्रतिसाद नहीं दे रहे, तो तू मंद बुद्धि का हाथी बन जा, तुम्हारे लिए अभी जिस व्यवहार तुम्हारा जो है वो हाथी के शरीर के लिए योग्य है। तो तुरंत ये हाथी बन जाते हैं। वैसे कहा गया कि ऐसी सुंदर अवस्था में थे कि उनको इस शाप को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह प्रकार से भगवान के ध्यान में मग्न होते हुए ये घटना हुई तो उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया भगवान की इच्छा की तरह। मैंने कहा मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ, पूरा सर्वस्व त्याग करके उनको अपने आप को अर्पण कर चुका हूँ, तो मेरा जो क्षेम कुशल है वो सब उनके हाथ में है, और अभी मेरी ज़िंदगी में जो भी होना है उनकी इच्छा से होना है, तो अगर उनकी इच्छा से अगर शाप मिला है तो उसमें मेरा भला होगा, इसलिए उन्होंने शांत मन से उस शाप को स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भक्तों का ये लक्षण है, भक्त जो उनके जीवन में जब भी कुछ होता है, बुरी घटना होती है, अच्छी घटना होती है, तो भगवान की कृपा ही मानते हैं। हाँ, तत्तेनुकंपम सुषुमिक्ष मानु मुंजान एवात मतम विपाकम ऋद्वाग वपुरभिर विदधान नमस्ते, कि भगवान की दया से जो भी हो रहा है, अगर कष्टमय भी हो रहा है तो वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये विश्वास जब भक्त के मन में आता है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, किसी भी अवस्था में कुछ भी हो जाए भगवान की इच्छा के नहीं होता है, इच्छा से नहीं, बिना इच्छा के नहीं होता है, और भगवान की इच्छा से जो भी होता है वो जीव के कल्याण के लिए होता है, ये विश्वास जब आता है तो उसको वो सिद्ध अवस्था बताई गई है। और भक्त यहाँ पर रुकता नहीं है, जब बाह्य दृष्टि से प्रतिकूल घटना होती है, जैसे इनको शाप मिल रहा है, हाँ अच्छे खासे इंसान थे, राजा के रूप में विरक्त होकर अच्छा खासा तपस्या कर रहे थे, जीवन की परिपूर्णता की ओर बढ़ी रहे थे, तो हाथी बना दिया गया, हाँ अभी कोई इतनी अच्छी घटना नहीं है हाथी बनना, इंसान से हाथी बन रहे, फिर भी समझते हैं कि आगे क्या होने वाला पता नहीं है, लेकिन जानते हैं कि इसमें भी मेरा भला है, और केवल स्वीकार न करते हुए धन्यवाद भी दे रहे हैं भगवान को, दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं उसको, एक ऋणी भावना से, कृतज्ञ भावना से उस घटना को स्वीकार कर रहे हैं। ये एक भक्त का लक्षण है, भक्त कभी भी भगवान की इच्छा से जो भी घटना घटती है उसके विद्रोह नहीं करता है, उससे क्या कहते हैं उसको, उससे जूझता नहीं है, उसको स्वीकार करता है, वो एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। तो इस तरह से राजा इंद्रदुम्न हाथी बन जाते हैं, लेकिन बहुत बलशाली, बहुत विशालकाय और बहुत प्रभावशाली राजा बनते हैं, अनेक पत्नियां उनकी हैं, हथिनी, अनेक बच्चे हैं, सेना है, ऐश्वर्य है। तो एक दिन वहाँ पर वो अपने पत्नियों को लेकर, बालकों को लेकर, सैनिकों को लेकर नशे में चूर होकर वहाँ पर आते हैं, ऐसे कहते हैं नशे में इतने चूर थे वो कि उनके मुंह से वो क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज कॉल्ड श्योर, हाँ नहीं नहीं वो शराब मदिरा टपक रही थी ऐसे, इतने नशे में थे और वो इतने मदमस्त थे, इतने मदहोश थे कि सब पेड़ों को तोड़ते हुए, वेलियों को नुकसान करते हुए ऐसे जा रहे थे, उनके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी में कंपन हो रहा था, भूकंप सा हो रहा था, ऐसे भयंकर अवस्था में जा रहे थे वो। आगे जाते हैं, इस ऋतुमत सरोवर के पास पहुंचते हैं, तो उनके भय से, उनकी आवाज़ से, उनके चरणों के स्पर्श से, जमीन से जो भी कंपन हो रहा है उससे शेर, सिंह और बाकी भयंकर जो प्राणी जंगल में होते हैं भयंकर, वो सब भाग जाते हैं। केवल छोटे छोटे प्राणी जो है वो ऐसे खेलते रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्राणी जो है भय से भाग जाते हैं। और नदी में प्रवेश करते हैं, वो तालाब में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले मदिरा पान करने के बाद जो प्यास लगती है उसको ठंडे जल से अपनी प्यास बुझाते हैं और बड़े प्रेम से सबको जल में बुलाते हैं और पानी पिलाते हैं। और उसके बाद में बड़े प्रेम से शांत होने के बाद में सुंड में पानी लेकर अपने पत्नियों पर बड़े प्रेम से छोड़ते हैं, हाँ सर, उसका वर्षाव करते हैं आउट ऑफ लव, और फिर उनका आनंद क्रीड़ा शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है, बहुत देर तक आनंद ले रहे हैं अपने पत्नियों को बच्चों के साथ, सैनिक लोग दूर खड़े हैं पहरा दे रहे हैं कि राजा के आनंद में सुख में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और जब वो आनंद में सुख में मशगूल हो गए, वो पानी फेंक रहे हैं, ये भी पानी फेंक रहे हैं, इतना शीतल जल है, उसमें कमल खिले हुए हैं, उसमें कमल के सुगंधित पुकेसर हैं, वो जल पीते ही उसकी सुगंध अपने शरीर से आ रही है, हवा बह रही है मंद मंद शीतल सुगंधित, ऐसे सुंदर वातावरण था जो भोग के लिए अनुकूल था। और अचानक उनके जल क्रीड़ा की वजह से जल के अंदर जो मगरमच्छ था उसको बहुत क्रोध आया कि मेरे शांत वातावरण में ये हाथी आकर बहुत उछल पुछल मचा रहा है। तो उसने हाथी का जो पैर जमीन के पानी के अंदर था उसको अपने मुंह में ले लिया। मगरमच्छ होता है ना, उसका मुंह बहुत बड़ा होता है, आप जानते हैं ना, बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर कई नुकेले दांत होते हैं, मे बी हंड्रेड्स ऑफ टीथ, सैकड़ों टीथ होंगे उनके मुंह के अंदर, बहुत नुकेले। और हाथी का इतना बड़ा पांव जो है अपने मुंह में ले लिया उसने, और अचानक गजेंद्र को यह अनुभूति हुई कि अभी मेरा पांव फंस गया है। ये बहुत ही समर्पक घटना है। हम सब लोग भगवान को भूलकर इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया का भोग लेना चाहते हैं, और कभी कभी मशगूल हो जाते हैं, हाँ, कोई धन संपत्ति मिल जाती है, अच्छा पद भी मिल जाता है, हाँ शरीर भी सुंदर मिल जाता है, अच्छा कुल में जन्म हो जाता है, अच्छी विद्या भी प्राप्त हो जाती है, साधन भी जुड़ जाते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब हो जाता है। तो हम लोग भी इस सारे प्राप्तियों के मद में मदहोश होकर उस भोग लेने में लिप्त हो जाते हैं। खास करके हमें पैसे का बहुत गर्व होता है, जब पैसा आता है तो बिना पढ़ा लिखा हो या कुरूप आदमी भी हो या बिना किसी अच्छी अवस्था में हो, लेकिन पैसा आएगा तो एक अलग सा गर्व होता है उसको, और वो सबसे अपने आप को ऊंचा समझने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि पैसे से मैं कुछ भी भोग खरीद सकता हूँ, जो चाहिए वो अपने जीवन में ला सकता हूँ। तो ऐसे मद में जब हम मशगूल हो जाते हैं तो अचानक एक दिन ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आता है ब्लड कैंसर, हा? अचानक रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक और कोई बीमारी आ जाती है, हाँ कहीं पार्टी में जा रहे हैं, बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है, बहुत सारी योजना बना के रखी है, एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कुछ होने वाला है, आनंद मिलेगा, तो डिसेंट्री हो जाती है, हा? कुछ भी खा सकते हैं, या आज कहीं जा रहे हैं पार्टी में तो बुखार आ जाता है, वायरल फीवर, हाथ पैर टूट जाते हैं बिल्कुल। भौतिक जगत में पदम पदम यत विपदम नतेषाम, किसी भी समय संकट आ सकता है, किसी भी समय दुख प्राप्त हो सकता है, किसी भी समय कष्ट प्राप्त हो सकता है। हमारी सारी योजनाएं सुख की ओर रहती है, आनंद की ओर रहती है, लेकिन किसी भी समय नियति के प्रभाव से, हाँ विधाता के प्रभाव से, समय के प्रभाव से हमारे सुंदर आनंद की योजना में बिल्कुल भयंकर बाधा आ सकती है। ये भी निकल गए थे नशा करके आनंद से कि अभी आनंद लेंगे सरोवर में, लेकिन पैर अभी उनका फंस गया है मगरमच्छ के मुंह में, तो उन्होंने बहुत कोशिश की अपना पाँव निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पाए। फिर जो उनके साथ में आनंद ले रहे थे वो सब पत्नियां और बच्चे थे उनके, सैनिक थे, उन सब ने भी अपने हाथों से गजेंद्र को मगरमच्छ के मुंह से मुक्त करना चाहा, कोशिश किया उन्होंने, सब मिलकर भी मगरमच्छ को उसका मुंह जो है उसको पाँव अलग नहीं कर सके, क्योंकि मगरमच्छ जलचर प्राणी था और हाथी भूमि पर जीने वाला प्राणी था। मगरमच्छ अपने नेचुरल कंडीशन में था और हाथी नेचुरल कंडीशन में नहीं था, इसलिए मगरमच्छ बलशाली रहा और हाथी लड़ता रहा उससे। सब लोगों का सुख का जो योजना थी वह समाप्त हो गई, सब लोग स्तब्ध हो गए और देखने लगे। सारे देवता लोग आकाश में आ गए। ये बहुत अनोखा युद्ध देखने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसा युद्ध होने लगा कि कभी मगरमच्छ को उठा के पटक रहे हैं, कभी मगरमच्छ उनको उठा के पटक रहे हैं, लेकिन पांव उसके मुंह में ही है, तीन पांव से सुंड से उसको घुमा रहे हैं, ये उसको घुमा रहे हैं। और ये युद्ध जो है स्वर्गीय 1000 साल तक चलता रहा, 1000 celestial years, मतलब यहाँ के 6 महीने वहाँ का 1 दिन होता है, ऐसे 30 दिन का 1 महीना होता है, ऐसे 12 महीने का 1 साल होता है, ऐसे 1000 साल तक वो युद्ध चलता रहा। लेकिन ऐसे कहा है कि मगरमच्छ को अपने जल से पोषण मिलता रहा और हाथी को, क्योंकि वो जल में था, उसको अपना पोषण नहीं मिलता रहा, और धीरे 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 हाथी कमजोर होता गया। समय का प्रभाव हमारे पर ऐसा होता है, हम लोग अपने, जैसे मैंने पहले भी बताया, विद्या, सुंदरता, धन, अधिकार, शक्ति, बल, उसको बड़ा गर्व करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे घटनाएं जीवन में होती है ना कि हमारा सारा जो हौसला जो है, जिस पर हम इतना गर्व करते हैं, वो टूट जाता है। जैसे कि मृत्यु का समय आता है तो हमारी विद्या, हमारा सौंदर्य, हमारे अच्छे कुल का जन्म, हमारी डिग्री, हमारा अधिकार, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारी इन्फ्लुएंस, हमारी शक्ति, हमारा धन कुछ काम में नहीं आता है, आदमी एकदम असहाय हो जाता है। एक ऐसी अनुभूति उसको होती है उस समय कि मैं बिल्कुल अभी बेकार हो गया हूँ, मेरे जिस जिस वस्तु पर मुझे गर्व था वो वस्तु, किसी भी एक, कोई भी एक वस्तु मुझे अभी सहायता नहीं कर सकती। तो पहले तो जो युद्ध सब शुरू हुआ था तब हाथी को बड़ा गर्व था कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे चरणों से तो पृथ्वी कांपती है जब मैं चलता हूँ पृथ्वी पर, इतना बल होते हुए डरने की जरूरत क्या है। तो बहुत जोरदार युद्ध किया उसने, लेकिन धीरे 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 जिस तरह समय हमसे हमारी जवानी, हमारा हौसला, हमारा अधिकार सब छीन लेता है, हाँ, और फाइनली मृत्यु के रूप में सब कुछ छीन लेता है, हाँ, शनै ही धीरे धीरे क्यों ना हो, निश्चित रूप से समय हमसे हर चीज छीनते रहता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ना तो चीज हमारी होती है, भगवान के द्वारा दी होती है वो, और भगवान के द्वारा दिए होने की वजह से वो कभी भी हमसे वो ले सकते हैं वापस या तो एक झटके में लेंगे, या तो धीरे धीरे क्यों ना हो निश्चित रूप से ले लेंगे वो सब। इट्स ऑल बोरोड रिचेस, दे आर नॉट योर रिचेस। इस तरह से 1000 साल स्वर्गीय भयंकर घनघोर युद्ध करने के बाद जो देवताओं के रोमांच खड़े हो गए उसको देख के, हाथी एकदम क्या हो गया, दुर्बल हो गया, इतना दुर्बल हो गया कि उसको समझ में आया, अनुभूति हुई, जैसे हम जैसे लोगों को होती है बीमारी में और कष्ट में और संकट में, कि हम, हमारे पास कोई बल नहीं है, वी हैव नो स्ट्रेंथ ऑफ आवर ओन। जो भी बल है भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान की इच्छा है तो बल चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बुद्धि भी भगवान की है, जब जब भगवान की इच्छा है तो चलेगी, तो भगवान की नहीं इच्छा तो नहीं चलेगी। कभी हम बुद्धिमान नजर आएंगे तो कभी हम निर्बुद्ध नजर आएंगे, जैसी उनकी इच्छा होगी वैसे होगा। यू विल अपियर लाइक अ फूल और सम विल अपियर लाइक अ इंटेलिजेंट पर्सन, सेम पर्सन एंड डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट सिचुएशंस। तो तब उसे ध्यान में आया कि मैं अभी अकेला बहुत असहाय हो गया हूँ और मगरमच्छ मेरे ऊपर हावी हो गया है। तो उस समय उसने आसपास देखा कि मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्रगण, मेरे सैनिक, मेरे संरक्षक सब मेरे सामने हैं, लेकिन क्या देखा उन्होंने, वो सब लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे। तो सहारा उसने, जब खुद के ऊपर उसका विश्वास ढल गया तो उसने अपने बाहर सहारा ढूंढने का कोशिश किया, भगवान को छोड़कर दुनिया में, लेकिन सब लोग रो रहे थे, सब लोगों को हृदय से उनको सहायता करने की इच्छा थी, चाहती भी थी, वो प्रेमी थी उसके, लेकिन सहायता करने में बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको, हाँ, समर्थ नहीं थे, असमर्थ थे। ये हमारे जीवन की कहानी है एक्चुअली। हम भी अपने जीवन में बहुत हौसला रखते हैं कई चीज़ों पर, धन के ऊपर, शक्ति के ऊपर, शरीर के ऊपर, यौवन के ऊपर, सगे संबंधियों के ऊपर, लेकिन जब समय आता है तो ये सब सहारे टूटते हुए नजर आते हैं। ऐसे एक भजन है, सहारा लिया था जिस जिसका हमने, वो बीच भंवर में डूबते हुए नजर आते हैं। सब सहारे जो है ऐन मौके पर डूबते हुए नजर आते हैं। सहारा लिया था जिस जिसका हमने, वो सब डूबते रहे भंवर में बिचारे। एवरीथिंग वे वी कीप फेथ ऑन इज ऑलवेज डिचिंग अस लास्ट मोमेंट। क्योंकि ये सब सहारे जो हम लेते हैं वो सब डूबने वाले सहारे होते हैं। जो डूबने वाले सहारे होते हैं वो किसी डूबने वाले को कैसे बचा सकते हैं? अगर किसी डूबने वाले को बचाना है तो आपको बोट पर होना चाहिए, हाँ तो क्या कहते हैं उसको, जहाज पर होना चाहिए। अगर आप डूबने की अवस्था में नहीं है तो ही आप किसी को डूबने की अवस्था से बचा सकते हैं। अगर मैं डूब रहा हूँ, आप भी डूब रहे हैं और आप मेरी सहायता लेते हो तो दोनों साथ मिलकर डूबेंगे। इसलिए अगर सहारा लेना है तो उसी व्यक्ति का लेना चाहिए। जैसे हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो हमसे प्रेम करते हैं और सहायता करना भी चाहते हैं लेकिन सहायता कर नहीं सकते क्योंकि वो असमर्थ होते हैं, तो हमें सहारा किसी एक ही व्यक्ति का लेना चाहिए, वो व्यक्ति है भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि वो प्रेम भी करते हैं, हमको सहायता करना भी चाहते हैं और सहायता करने में समर्थ भी है, वो इज ऑल पावरफुल टू हेल्प यू। किसी भी स्थिति में भगवान हमें मदद कर सकते हैं, केवल कमी है उनसे सहारा मांगने की। अगर सहारा मांगने में चूक जाते हैं तो हम डूब जाएंगे, लेकिन सहारा मांगते हैं तो किसी भी भयंकर अवस्था से भगवान हमको तार सकते हैं। जैसे गजेंद्र की अवस्था है, हाँ तो देखा सब सैनिक लोग सब रो रहे हैं, पत्नियां रो रही, बच्चे रो रहे हैं, कोई अभी सहायता कर चाहते हैं वो भी सहायता नहीं कर सकते। उस समय उसको ध्यान में आया कि मुझे भगवान के बिना कोई नहीं बचा सकता। और ये बड़ी अद्भुत बात है, यहाँ पर लिखा गया है कि उस समय उन्होंने अपना मन जो है भगवान के ऊपर स्थिर किया, हृदय को भगवान के ऊपर स्थिर किया और भगवान के लिए प्रार्थना अर्पण की, जो उन्होंने पिछले जन्म में इंद्रदुम्न के रूप में सीखी थी और जिसका अभ्यास भी किया था। ये भी हमारे लिए बहुत आश्वस्त करने वाली बात है। आध्यात्मिक जीवन जो है ना वो चिरंतन होता है। आज आप जो करोगे आध्यात्मिक जीवन में वो आपके अकाउंट में परमानेंट रहेगा। भले हम शरीर बदलेंगे, दो चार जन्म हो जाएंगे हमारे, फिर भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति नष्ट नहीं होती है शरीर के साथ। जो शरीर के स्तर पर हमने कमाया हुआ है वो शरीर के साथ सब नष्ट हो जाएगा। जो भी भौतिक स्तर पर है, या कि शरीर के स्तर पर है या शरीर से संबंधित स्तर पर है, द फैमिली, नेशन, कास्ट, हाँ लैंग्वेज, कंट्री, वट एवर यू कॉल, जो भी हमारे शरीर से संबंधित है, एक्सटेंडेड फैमिली और रियल फैमिली, शरीर का संसार प्रपंच या हमारे शरीर के संबंधित लोगों का प्रपंच, इसके स्तर पर हमने जो भी कमाया हुआ है वो सब शरीर के समाप्त होते सब समाप्त हो जाएगा। जो आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा के स्तर पर कमाया हुआ है वो आत्मा के साथ जाएगा, जो शरीर के स्तर पर कमाया हुआ है शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। भगवद्गीता में एक श्लोक है, नेहा भिक्रमणाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान की भक्ति के विषय में स्वल्पम अप्यस्य, छोटा सा भी काम अगर हम करते हैं, थोड़ा सा भी काम करते हैं वो हमारे साथ जाएगा, और त्रायते महतो भयात्, सबसे भयंकर जो भय है उससे भी वो छोटा सा भगवान की सेवा में किया हुआ कार्य जो है वो हमको तार देगा। त्रायते महतो भयात्। इसलिए कभी भी भगवान की भक्ति में कार्य करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, बड़े खुले दिल से विश्वास के साथ में भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी शाश्वत वस्तु है जो हमारे साथ रहेगी, हमारे साथ जाएगी और जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में रहेगी। इंद्रदुम्न की जन्म में जब उन्होंने विरक्त होकर भगवान का भजन किया था, भगवान के भजन का अभ्यास किया था, तब जो जो प्रार्थना की थी वो भगवान की कृपा से उनको याद आई। हाथी के जीवन में, हाथी को ऐसा कहा गया कि बहुत बड़ा शरीर लेकिन उसके प्रमाण में बुद्धि नहीं होती उसके अंदर, हाँ इंटेलिजेंस नॉट प्रोपोर्शनल टू द बॉडी, हाथी को डल हेडेड कहा गया है, मंद बुद्धि कहा गया है। तो हाथी जैसे मंद बुद्धि शरीर में भी, क्योंकि आत्मा उनकी वही थी, कभी आत्मा नष्ट नहीं होती है, हाँ नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, कभी अग्नि से, हवा से, पानी से, शस्त्र से आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा वैसे के वैसे रहती है। आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है, बस यात्रा करती रहती है फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर व्हीकल, लेकिन नष्ट नहीं होती, वैसे के वैसे रहती है, उसके परावर्तन भी नहीं आता है, वो सेम रहती है, खाली चेतना उसकी बदली हो सकती है। इसलिए जो पीछे किया हुआ आध्यात्मिक कार्य था उसका लाभ उसे एन मौके पर जब उसको सबसे अधिक जरूरत थी उसको स्मृति हुई, तो हाथी के शरीर में भगवान की याद करने की कैसी संभावना है? लेकिन चूंकि पिछले जन्म में उसने भगवान को पुकारा था, वही पुकार उसने इस जन्म में लगाई और उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये जो गजेंद्र की प्रार्थना है, सब लोग ध्यान से सुनना, इस प्रार्थना का महात्म्य आपको बाद में बताएंगे। वो कहते हैं कि हे भगवान, आप सभी सृष्टि के मूल हो, मैं आपकी शरण में आता हूँ, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप परिपूर्ण हैं हर दृष्टि से, आप विश्व के राजा हैं, इसलिए मैं आपसे सुरक्षा के लिए आपके अपने आप को अर्पण करता हूँ। और आगे कहते हैं कि क्योंकि मैं जानवर हूँ फिर भी आपके शरण को आशरण आ रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत भयंकर स्थिति में हूँ। ये उसकी और एक बुद्धिमानी की बात है। संकट सबके जीवन में आता है, लेकिन संकट आते हैं हम लोग क्या करते हैं, पैसे का सहारा लेते हैं, रिश्तेदारों का सहारा लेते हैं, डॉक्टर का सहारा लेते हैं, और किसी अपना कॉन्टैक्ट इन्फ्लुएंस का सहारा लेते हैं, लेकिन एक समय पर सब सहारे टूटते हुए नज़र आते हैं। लेकिन बुद्धिमानी की बात यह है कि संकट आते ही केवल एक व्यक्ति मुकुंद जो हमें मुक्ति दिला सकता है उसका ही सहारा लेना चाहिए। देवी देवताओं का सहारा भी लेना चाहिए, क्योंकि देवी देवता केवल उनका जितनी क्षमता है उतना ही मदद कर सकते हैं। उनका लेवल अगर सब इंस्पेक्टर का होगा तो वो चीफ इंस्पेक्टर का सहायता नहीं कर सकता है। आपका जितना कॉन्टैक्ट है उतना ही आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन परम भगवान का ऐसा नहीं है। आप उनको किसी भी समय किसी भी अवस्था में पुकार सकते हैं, वो हर समस्या का समाधान करने में समर्थ रहते हैं, इसलिए हमेशा उनका ही सहारा लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि मैं डेंजरस पोजिशन में हूँ इसलिए आपका सहारा लेना हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप बहुत दयालु हैं, आप मेरे हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, इसलिए मैं आपकी ओर अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। हे भगवान जो अनंत दयालु हैं, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे मुक्त कीजिए इस भय से, इस संकट से, क्योंकि मैं बहुत भौतिकतावादी जीवन जी रहा हूँ। आगे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपके शुद्ध भक्त जो हैं वो ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं, संकट से मुक्त करो, कष्ट दूर करो, पीड़ा दूर करो, वो तो केवल आपका भजन चाहते हैं, केवल आपकी सेवा चाहते हैं। लेकिन मैं मतिमंद हूँ, मेरी चेतना बहुत घिलौनी है, इसलिए मुझे संकट का अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं संकट में आपको पुकार रहा हूँ। ये भी बहुत समझने वाली बात यह है कि भगवान कहते हैं कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदार दी। बुद्धिमानी की बात क्या है, आपको अगर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत सारा भोग लेना है, बहुत सारा आनंद लेना है दुनिया में, तो भी आप कृष्ण के पास ही जाइए, देवताओं के पास में जाइए, डोंट टेक शॉर्टकट्स। क्योंकि देवता लोग कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बनिया है समझो, हाँ एक बालक को आपने पिताजी ने 10 रुपये दिया, जाओ बेटा कुछ खा लो, तो वो बनिया के पास जाता है और कहता है 2 4 स्क्वायर सिगरेट दे दो, तो बनिया खाली पैसे गिनेगा सिगरेट दे देगा उसको, तो बच्चा सिगरेट पिएगा। लेकिन अगर वही बच्चा उसके पैसे लेकर अगर अंकल के पास जाएगा, बोला अंकल 2 4 स्क्वायर सिगरेट दे दो, तो अंकल 2 चाटा लगाएंगे उसको जोरदार। क्या अंतर है इसके अंदर, बनिया को आपसे प्रेम नहीं है, बनिया खाली व्यवहार करता है, आपके पास कितने पैसे हैं 2 4 स्क्वायर के योग्य हैं तो लेता है आपको दे देता है। लेकिन अंकल को भी व्यवहार जानते हैं, अंकल भी व्यवहार जानते हैं कि 2 4 स्क्वायर सिगरेट की कीमत क्या होती है, बच्चा दे भी रहा है लेकिन वो पैसा देकर वो 2 चाटे मार रहे हैं उसको, क्योंकि अंकल जो है वो बच्चे पर प्रेम करते हैं, बच्चे के लिए अच्छा क्या है वो करते हैं, केवल पैसे दे रहे से सिगरेट नहीं देते उसको। तो देवता लोग ऐसे होते हैं, देवता के पास जो शक्ति होती है, आपने कुछ पूजा अर्चा की है, उनके लिए कोई नियम पालन किया है, तो उसका वो फल दे देते हैं। तो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है ये सोचने का काम उनका नहीं है। लेकिन भगवान के पास जाते हैं और बहुत सारी भौतिक इच्छाएं व्यक्त करते हैं कि मुझे ये इच्छा है पूरी करना है, तो भगवान केवल वही पूरे करेंगे जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके कल्याण के लिए अच्छा नहीं है वो इच्छा नहीं पूरी करेंगे। अगर पिता के पास बच्चा कहता है मुझे ब्राउन शुगर दे दो, तो अगर पिता बच्चे पे प्रेम करता है तो नहीं देगा उसको, उसके लिए केला ला के देगा, केला खाओ आपके सेहत के लिए अच्छा है। तो अपने अच्छे बुरे का विचार केवल पिता माता करते हैं जो प्रेम करते हैं, वैसे ही परम भगवान जो है वो आप उनके पास कुछ भी लेके जाएंगे, हमको अकल नहीं होगी हम क्या मांग रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से समझ बूझ के साथ में आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है। इसलिए अकाम हो, अगर आपके पास कुछ भी इच्छा नहीं है, आप निष्काम हो चुके हो, या सर्व काम बहुत सारी इच्छाएं, या आपको मोक्ष की इच्छा है मोक्ष काम, तो भी उनके ही पास जाना चाहिए, कहीं और दरवाजे खटखटाने के लिए नहीं जाना चाहिए, एक ही दरवाज़ा रखो और वहीं पर दस्तखत देते रहो। हाँ, डोंट गो टू मैनी डोर्स, वहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, कभी देर से दरवाज़ा खुलेगा लेकिन खुलेगा ज़रूर, आपकी प्रार्थनाएँ सुनी जाएंगी क्योंकि वो सुनने के लिए बैठे हैं। केवल आप किस तरह से पुकारते हो उस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आप दर्द भरे हृदय से पुकारेंगे तुरंत रिस्पांस मिलेगा, अगर आप खेलते हंसते हुए पुकारेंगे तो नहीं रिस्पांस मिलेगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, जानते हैं कि आपके भक्त जो है वो इस तरह की मांग नहीं करते, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं संकट में हूँ, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मतलब प्रामाणिकता, डोंट ट्राई टू एक्ट वेरी एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भी अवस्था हमारी है उससे प्रामाणिक रहना चाहिए। अगर मैं दुख में हूँ, एक्सेप्ट कि मैं दुख में हूँ, मुझे दुख से मुक्त करो भगवान। जो आध्यात्मिक उन्नति हमारे अंदर नहीं है उसका बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। उनके सामने हम कोई दिखावा नहीं कर सकते, कोई नाटक नहीं कर सकते, सत्य को वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए भगवान के सामने स्वच्छ हृदय से, प्रामाणिक हृदय से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। नेवर ट्राई टू क्रिएट अ फसाड। जो सत्य है उसी को अवगत होकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो है नम्रता को बड़ा पसंद करते हैं। ढोंग और जो क्या कहते हैं दाम्भिकता जो है ना, उसको भगवान पसंद नहीं करते। अगर हम पतित से पतित भी होंगे तो भगवान को पता है हमारी क्या अवस्था है। भगवान के सामने हम पतित ही हैं, अगर दिखाएंगे भी हम एडवांस्ड है फिर भी हम भगवान के सामने पतित ही हैं। तो ज़रूरत क्या है, जैसे कि हाथी के सामने और चींटी खड़ी है और चींटी बोल रही पंजा लड़ाओगी, तो हाथी क्या करेगा, हंसेगा और क्या करेगा। हाँ चींटी अगर सी माई मसल्स ऐसे बोलेगी तो हाथी हंसने के और क्या कर सकता है। वैसे भगवान के सामने हम बोलेंगे, अरे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना इन्फ्लुएंस है, इतना बड़ा पोजीशन है, ये मैं चलाता हूँ, वो मेरे अधिकार में है, तो वो हंसेंगे हमको, क्योंकि एक तो सब वो उनका दिया हुआ है और दूसरा बहुत तुच्छ है, ऐसा कि गर्व करने लायक है ही नहीं वो, फिर भी उस पर गर्व कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोलेंगे, चलो ठीक है थोड़ा मजा ले लो, थोड़ा धक्का लगेगा फिर आ जाओ मेरे पास। इसलिए भगवान के सामने बिल्कुल नम्र होके अपनी सच्चाई को समझते हुए प्रामाणिक हृदय से जाना चाहिए। जैसे गजेंद्र जा रहे हैं, वो जानते हैं कि प्योर डिवोटीज जो होते हैं, शुद्ध भक्त ऐसी प्रार्थना नहीं करते, फिर भी वो अपनी स्थिति से प्रामाणिक है, एक्सेप्टिंग कि मैं सफरिंग में हूँ, दुख में हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए, जैसे भी हो मेरा दुख आप स्वीकार कीजिए, मुझे मुक्त कीजिए। तो आगे जाकर वो बोलते हैं, क्योंकि अभी 1000 साल मगरमच्छ से भयंकर युद्ध करने के बाद में बहुत सारी उसकी आत्मशुद्धि भी हो जाती है, इट्स प्योरीफाइड, तो कुछ कुछ उसको अनुभूतियाँ भी होती हैं। अभी कौन सी अनुभूति व्यक्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी मुझे इस हाथी के शरीर में जीने का बहुत बोर हो गया है, आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस एलिफेंट बॉडी। उसकी चेतना अभी उन्नत हो रही है, अभी वो समझ में आ रहा है कि मैं हाथी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, दिस रियलाइजेशन इज गॉट। तो क्या बोल रहे हैं वो, कि एक्चुअली मुझे इस हाथी के शरीर में जीने की इच्छा नहीं है, मगर मच्छ के बंधन से मुक्त होने के बाद भी मुझे भी जीने की तमन्ना नहीं है, मुझे भी मुक्ति चाहिए भगवान, आपकी सेवा में आना चाहता हूँ, और कृपा करके मुझ पर ये जो हाथी के रूप में अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है उसको आप नष्ट कर दो। दिस इज द प्रेयर वी कैन ऑफर टू द लॉर्ड। इसे कहा गया कि भगवान के सामने जाने के बाद में कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, सबसे पहले भगवान को दंडवत करना चाहिए, फिर उनका गौरव करना चाहिए, हे सृष्टि के रचयिता, हे दयालु, हे कृपा निधि, हे करुणा निधि, हे निर्माता, कुछ शब्दों में जैसे आपको पता है वैसे उनके उनका गौरव करना चाहिए। उसके बाद में माफ़ी मांगनी चाहिए, जो हमारे अपराध हैं, गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद में उनका धन्यवाद देना चाहिए कि मैं तो यमराज के दर्शन करने योग्य हूँ लेकिन आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, जो मेरी योग्यता नहीं है फिर भी मुझे आपका दर्शन का लाभ हो रहा है। और इस तरह से फिर उसके बाद में प्रार्थना करनी चाहिए, जो हमारे मन में कोई कष्ट है, पीड़ा है, कोई वेदना है, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और उसके बाद में जो भी हमारे सगे संबंधी है, प्रियजन है, वो सब के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और क्या प्रार्थना करनी चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, हे भगवान कृपा करके मुझे उससे मुक्त करा दो। क्योंकि सबसे बड़ी जड़ क्या है हमारे ये दुख की, इस भौतिक दुनिया में हम जी रहे हैं, सबसे बड़ा जड़ क्या है, अज्ञान, अविद्या। यह अविद्या कि मैं शरीर हूँ और यहाँ भोग लेने के लिए आया हूँ, भोगता हूँ, अहम भोगता, अहम ईश्वर, अहम भोगता, इस भावना से हम जी रहे हैं, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। और हम परपेचुअली निरंतर दुख भोगते जा रहे हैं क्योंकि हम इस अविद्या में हैं, इस अहंकार में हैं कि मैं कुछ हूँ, भगवान से अभिन्न हूँ, भगवान से अलग हूँ। तो यहाँ पर अविद्या के आवरण को मुक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब ये प्रार्थनाएं बड़ी आर्त हो गई, तब वैकुंठ में हाँ श्री विष्णु जी सतर्क हो गए। मैंने कहा ना पहले ही भीष्मदेव के उदाहरण से, जैसे हम उनको पुकारते हैं वैसे वो सुनते हैं। जैसे कि बच्चा छोटा सा होता है घर पे ना, तो वो ऊ करता है तो तुरंत माता उसको उपकरण बदल के थप थप आके सुला देती है, फिर जोर से वो करता है फिर थुला देती है, फिर होता है तो खिलौना देती है। एक दिन समय ऐसा आता है कि आप खिलौना दो, खाना दो, या करवट बदलो, थपथपाओ, फिर भी वो रुकता ही नहीं है, बहुत जोर से रोता है। तो माता फिर गैस वैस बंद करके तुरंत भाग के अपने आप उसको अपने गोद में लेती। वो पुकार ऐसी होती है कि वो केवल माता का अस्तित्व ही चाहिए, अभी नींद नहीं चाहिए, खिलौना भी नहीं चाहिए, अभी माता ही चाहिए। तब माता सब कुछ छोड़कर, आप सब ने अनुभव किया होगा ना, सब माता तो आप है, सब लोग अनुभव किया होगा आपने कि जिस प्रकार से बालक पुकारता है ना वैसे आप अपने आप को बालक को प्रस्तुत करते हो। उसी तरह से हम भी ऐसे बालक की तरह हैं, अनजान बालक की तरह, जिस तरह से रो रो के उनको पुकारते हैं उसी तरह से वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो जब इनकी प्रार्थनाएं आर्थ हो गई एकदम हृदय से असहाय होकर पुकारा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक बालक जैसे रो रो कर माता को पुकारता है, माता के लिए रोता है, वैसे रो रो कर उनको पुकारना चाहिए। जैसे जिससे जैसे रोने से तुरंत माता रिस्पॉन्स देती है वैसे हमको भगवान को पुकारना चाहिए जिससे तुरंत वो रिस्पॉन्स दे। तो जब इनकी प्रार्थनाएं अति आर्त अवस्था में पहुंच गई तो ऐसे कहा गया है कि भगवान तुरंत वैकुंठ से निकले। अभी अगर आप गणित करेंगे ना तो कई हाउ टू से ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस माइल्स इज वैकुंठ फार फ्रॉम हियर। भौतिक दुनिया में हम लोग पृथ्वी पर है, इसमें ब्रह्मलोक भी है जो यहाँ से कई लाखों लाखों मील दूर है। वो ब्रह्मांड के बाद में अनंत ब्रह्मांड है, फिर महाविष्णु है, उसके बाद में भौतिक जगत समाप्त होता है, विरजा नदी शुरू होती है, विरजा नदी के बाद में ब्रह्म ज्योति शुरू होती है, ब्रह्म ज्योति के बाद में कई वैकुंठ लोक वहाँ पर विराजमान है जहाँ पर विष्णु विराजमान है। तो इतना अंतर अगर काटने जाते हैं भाई विष्णु नॉर्मल स्पीड से तो कई दिन लग जाते हैं। लेकिन ऐसे कहा है कि उन्होंने गरुड़ जी को इस तरह से दौड़ाया तो गरुड़ जी हाँफने लगे और बेहोश हो गए। तो उन्होंने गरुड़ पर बैठने के बजाय गरुड़ को अपने कंधे पे लिया और कुछ ही क्षणों में वहाँ पर पहुँच गए। हाँ, जिस अंतर को वो कई दिन तक काट सकते थे उन्होंने कुछ क्षणों में काटा और रुके नहीं, कह रहे मेरा वाहन जो है वो क्या कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया है। हाँ, वो ब्रेक डाउन वाहन को उन्होंने अपने कंधे पर लिया और वो सीधे भाग के वहाँ पर पहुँचे। और जैसे ही वो नजर आए सामने, उस समय बड़ी दर्द में थे, वो बड़ी पीड़ा में थे, उनका मुंह जो है मगरमच्छ के, उनका पैर मगरमच्छ के मुंह में था, उनकी मृत्यु होने के से क्षीण दुर्बल हो गए थे। उस समय उसी तालाब से एक कमल को तोड़कर उन्होंने भगवान की ओर अर्पण किया और भगवान को प्रार्थना अर्पण की, हे भगवान आप मुझे बचाइए, हे नारायण आप इस विश्व के स्वामी हो, परम पुरुषोत्तम हो, मैं आपको असहाय होकर दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवान को हम हमेशा कहते हैं ना कीर्तन में, पुकारो पुकारो पुकारो, क्योंकि जब तक हमारे पुकार में कशिश नहीं होती है तब तक उनका ध्यान आकर्षित नहीं होता है। इसलिए जब भी भगवान को पुकारने का मौका आता है तब सारे बटन बंद करने चाहिए, हाँ दिमाग के, बुद्धि के, विचारों के, भावना के, सब बटन बंद होने चाहिए, केवल एक ही बटन ऑन होना चाहिए भगवान के ध्यान का। और हमारा जो अस्तित्व है, हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व जो है वो उनके चरणों में नाम के ध्वनि के माध्यम से अर्पण होना चाहिए। वी मस्ट ऑफर द फ्लावर ऑफ आवर सोल थ्रू द होली नेम एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, तब जाकर वो सुनेंगे। तो कई लोग पुकार रहे हैं उनको, पैसा दो, सुंदरता दो, अधिकार दो, हाँ पावर दो, स्वर्ग में जन्म दो, बहुत लोग पुकार रहे हैं, बहुत कोलाहल है वहाँ पर। उस कोलाहल में ये जो पुकार होती है हृदय की, नाम के माध्यम से उनके हृदय तक पहुँचती है, तब उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। भगवान का ध्यान आकर्षित करने का एकमेव तरीका है उनका नाम। और ये मत समझना केवल कलयुग में है, कलयुग में तो युग धर्म के रूप में उसको माना गया है, लेकिन हर युग में भगवान के नाम का महत्व है। भगवान का नाम संकीर्तन का जो महत्व है वो सत्ययुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, और कली में तो है ही है। वो प्रधान हो जाता है यज्ञ और ध्यान के बीच में, बीच में से वो प्रधान हो जाता है कलयुग में, एकमेव मार्ग बच जाता है। लेकिन सभी समय के लिए, चिरंतन काल के लिए भगवान का नाम या भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सब लोग पुकारेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके बाद में भगवान जब नीचे उतरे तो भगवान ने झट से अपने दिव्य कर कमलों से मगरमच्छ के मुंह से हाथी का पैर निकाल दिया। ऐसे कहा गया है कि जैसे ही भगवान का दिव्य हस्त स्पर्श, दिव्य कर कमलों का उसका स्पर्श हुआ तो सारी वेदना से गजेंद्र मुक्त हो गया। उसके साथ साथ एक तत्क्षण उसकी सारी वेदनाएं नष्ट हो गई और उसी साथ में जितनी भौतिक इच्छाएं उसके मन में बची थी वो भी नष्ट हो गई और तत्क्षण भगवान के प्रति प्रेम उसके हृदय में जागृत हो गया। और एक बात तत्क्षण हो गई, उसका हाथी का शरीर नष्ट हो गया और उसी क्षण में उन्हें चतुर्भुज विष्णु दूत का वैकुंठ का शरीर प्राप्त हो गया। भगवान का स्पर्श जो है वो इस तरह से होता है। भगवान का स्पर्श कई तरह से हो सकता है, ध्वनि से हो सकता है, कृपा के माध्यम से आ सकता है, नाम के माध्यम से हो सकता है, संत के माध्यम से हो सकता है, अनंत माध्यम से, भगवान की इच्छा है किस माध्यम से आप पर कृपा करें। लेकिन भगवान का एक बार संपर्क हो जाता है तो हम भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम ऑल मटीरियल डिजायर्स, ऑल मटीरियल एंग्जाइटीज एंड पेन्स एंड सफरिंग्स इंस्टेंटली। ये सब एक साथ में होता है, वन बाय वन नहीं होता है। हाँ, पहले बुखार उतरेगा, फिर बलगम निकल जाएगा, फिर वजन बढ़ेगा, ऐसे नहीं होता है एक ही साथ में। ये ऐसी दवा है भगवान के संपर्क की कि वो तत्क्षण सारी सिद्धियां प्राप्त करा देती है। अभी एक क्षण पहले वो मगरमच्छ के मुंह में इतना कष्ट भोग रहे हैं, इतनी पीड़ा भोग रहे हैं, दर्द से पुकार रहे हैं, और जैसे भगवान का दिव्य कर स्पर्श होता है तो दर्द खत्म, भौतिक इच्छाएं खत्म, बॉन्डेज खत्म, जो भी उनका बंधन था भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु का वो खत्म हो गया और तत्क्षण उनको सारूप्य मुक्ति हो गई। सारूप्य मुक्ति का मतलब है भगवान जैसा ही शरीर प्राप्त होना। जिस रूप में भगवान आए थे चतुर्भुज रूप में, उसी चतुर्भुज सांवले रंग का मेघ श्याम रंग का शरीर उनको प्राप्त हो गया और वेदना से आनंद की अवस्था में आ गए, सारूप्य मुक्ति हो गई। और उसके उनको मगरमच्छ के मुंह से निकालते ही भगवान ने चक्र से मगरमच्छ का मुंह काट दिया और मगरमच्छ तुरंत एक गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। उसकी भी एक कहानी है, वो एक गंधर्व था, राजा हुहु उसका नाम था, राजा हुहु। और गंधर्व लोक में उसने देवल ऋषि का अपमान किया था, अपराध किया था, तो देवल ऋषि ने उसको मगरमच्छ होने का शाप दिया था, तो वो भी बंधन में था, वो भी शापग्रस्त था। उसका भी भगवान का संपर्क हुआ भगवान के दिव्य अस्त्र के रूप में। देखिए कृपा हो रही है लेकिन एक को मृत्यु हो रही है और एक का सारूप्य मुक्ति हो रही है। एक का मतलब मगरमच्छ के शरीर से मुक्ति हो रही है, गंधर्व का शरीर पुनः प्राप्त हो रहा है, और एक को हाथी का शरीर से मुक्ति प्राप्त करके सारूप्य मुक्ति मतलब जो वैकुंठ में रहने के योग्य शरीर है वो प्राप्त हो रहा है। इसमें अंतर क्यों है? क्योंकि गजेंद्र ने दर्द में ये प्रार्थना की थी कि मुझे अभी इस शरीर में रहना नहीं है, मुझे आपके धाम में मुक्त होकर आपकी सेवा करना है। जैसी प्रार्थना वैसा फल। हाँ, इसलिए ये जीवन इसके लिए भी है कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, इसका साइंस सीखने के लिए जीवन है, हाउ टू प्रे। हाँ, अगर हम लोग ठीक से प्रार्थना नहीं करेंगे तो जो प्रार्थना करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, जो भागवत में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। हाँ, भगवान को, भगवान जब देवकी के गर्भ में प्रकट हुए तो सारे देवताओं ने प्रार्थना किया है, ध्रुव महाराज ने भगवान की प्रार्थना की है, प्रहलाद जी ने महाराज की प्रार्थना की है, बलि महाराज ने प्रथम भगवान को प्रार्थना की है, देवकी वसुदेव ने भगवान की प्रार्थना की है, भगवान भागवतम में कई प्रार्थनाएं हैं, कुंती देवी ने भगवान की प्रार्थना की है, सारी श्रेष्ठ प्रार्थनाएं हैं। यहाँ पर गजेंद्र जी आगे प्रार्थना करेंगे, तो अगर हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो इनकी प्रार्थना का अभ्यास करके इन्होंने जैसी प्रार्थना की है वैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो मगरमच्छ केवल लड़ता रहा हाथी से, उसने कोई प्रार्थना नहीं किया, केवल पुकारते हुए गजेंद्र को मुक्त करने के लिए उसको काटा गया और अनायास भगवान का संपर्क हुआ इसलिए उसको अपना पुनर्देह प्राप्त हो गया। लेकिन एक बात जरूर हुई, मगरमच्छ के रूप में जो गंधर्व था जब वो गंधर्व रूप में आ गया तो वो भी सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गया। तो एक कॉमन इफेक्ट है, कॉमन इफेक्ट क्या है, भगवान का संपर्क होते ही हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें इस दुनिया में, इस जीवन में जीते हुए भगवान का संपर्क करने का बहुत कई आसान तरीके प्राप्त हैं, जैसे भगवान का नाम हम जप रहे हैं। दूसरा वर्णन किया गया है कि भगवान के विग्रहों की सेवा करना, इनके चरणों की सेवा करना, इनको श्रृंगार करना, इनका पूजन करना, ये करने से व्यक्ति निश्चित रूप से सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा और निश्चित रूप से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके अंदर, क्योंकि तो भगवान ने बड़ी ही दया से जीव को अपना संपर्क करने के लिए अनंत मार्ग देके रखे हैं, नॉट वन वे। अगर आपको शास्त्र के रूप में भगवान संपर्क करना है तो भी आप कर सकते हैं, भगवान का उपदेश सुनकर, भगवान की गीता सुनकर, भगवान के द्वारा दिए उपदेश सुनकर आप भगवान संपर्क कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा कर सकते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा कर सकते हैं। अनंत मार्ग दिए हैं आपको, एक ही मार्ग नहीं दिया है आपको, वैरायटी दिया है, विविधता दी है कि आप ये न केन प्रकार उनसे संबंध होना चाहिए। शास्त्र का कहता है ये न केन प्रकार मन कृष्ण निवेशयेत, मन को किसी भी माध्यम से भगवान के संपर्क में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, तब जाकर हम ऐसे बनेंगे अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान करवादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। जब भगवान से संपर्क करते हैं तो हम धीरे धीरे अन्य अभिलाषाओं से मुक्त हो जाते हैं, धीरे धीरे ज्ञान कर्म का गर्व और प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता है और हम भगवान के अनुकूल रूप में सेवा करना आरंभ कर देते हैं। इसलिए भगवान के संपर्क में रहना यही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य और बुद्धिमानी की बात है। ठीक है, तो इस तरह से गंधर्व भी सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गया और अपने गंधर्व लोक में चला गया, क्योंकि वो समझ गया कि इन्हीं की कृपा से मैं मगरमच्छ के शरीर से मुक्त हो गया हूँ। इसके बाद में गजेंद्र जब जो चतुर्भुज रूप प्राप्त किया, उसने वैकुंठ का शरीर प्राप्त किया, तो भगवान ने स्वयं उसे अपने वाहन पर बिठाकर वो स्वयं उसको वैकुंठ में ले गए। सो मच मर्सी, कितनी कृपा की गजेंद्र के ऊपर, क्या उसकी अवस्था थी। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, ये जन्म जन्मांतर से कंटिन्यूस होता है, ये एक जीवन का फल नहीं है। जो हमने जन्म जन्मांतर से कई दिनों से हम करते आ रहे हैं उसका कंटिन्यूएशन है। अगर हमने पांचवी कक्षा तक प्रगति की है तो अगले जन्म में पांचवी कक्षा के आगे प्रगति करेंगे, उस जन्म में दसवीं तक प्रगति करेंगे तो अगले जन्म में दसवीं से आगे प्रगति करेंगे, लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस दुनिया में डॉक्टर के रूप में अगर मैं मर जाता हूँ तो नेक्स्ट ईयर में डॉक्टर के रूप में जन्म नहीं लूँगा, मुझे फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, फिर SSC करनी पड़ेगी, अभी फिर नए नए एग्जाम उस समय जो आएंगे वो देने पड़ेंगे, या फिर डॉक्टर बनना पड़ेगा। आई कांट से कि लास्ट लाइफ आई वाज डॉक्टर, तो तुम्हें तुरंत मेक मी डॉक्टर एंड पेशेंट्स कम टू मी, ऐसा नहीं होता है। दोबारा पूरा शुरू करना पड़ता है अथेसा यति तक। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो भी पीछे किया है वो अपने साथ चलता है, उसको अक्षय खाता कहते हैं। इट्स अकाउंट विच नेवर गेट्स, क्या कहते हैं उसको, लॉस्ट, उसका नाश नहीं होता, इसलिए वो अक्षय खाता कहा गया है। जो भी भगवान की सेवा में होता है वो उस खाते में जमा होता है। जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं ट्राई टू मेक योर वेल्थ नॉट इन दिस वर्ल्ड, मेक योर वेल्थ इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ये जीवन उस अगले जीवन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए दिया गया है, इस जीवन में बटोरने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि इस जीवन में जो बटोरेंगे यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, लेकिन भगवान के विषय में जो जमा करेंगे वो अपने मुट्ठी में भर के आगे चलेंगे। सो प्लीज यूज अवर लाइफ इन सर्विस टू द लॉर्ड। इस तरह से भगवान की अनंत कृपा से जो गजेंद्र हैं वो अपने सब बंधनों से मुक्त हो गए और उसकी पुराने जन्म की शुद्ध भक्ति पूर्ण सेवा के वजह से राजा इंद्रदुम्न ने सब कुछ भगवान को याद किया और भगवान को प्रार्थना कर सके। तो अभी गजेंद्र ने जो प्रार्थनाएं की वो मैं जरा देखता हूँ। हाँ, फिर गजेंद्र को भगवान ने वरदान दिया। सुखदेव माँ गोस्वामी बताते हैं कि सबके सामने भगवान उनको वैकुंठ ले गए और जाने के पहले उन्होंने ऐसा वरदान दिया कि गजेंद्र की जो कथा है, भगवान ऐसा वरदान देते हैं कि रोज सुबह जो उठेंगे और गजेंद्र को इस कथा को याद करेंगे, मेरे दिव्य स्वरूप को याद करेंगे, गजेंद्र की प्रार्थना को याद करेंगे, मेरे सुंदर शरीर के ऊपर जो श्रीवत्स का मणि है, कौस्तुभ मणि है, वैजयंती माला है, मेरी गदा है, मेरा चक्र है, मेरा शंख पांचजन्य है और मेरे गरुड़ का जो वाहन है, इसको सुबह उठकर गजेंद्र के साथ जो याद करेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। और मेरे धाम को प्राप्त करेगा. प्लीज अंडरस्टैंड माई डियर डिवोटी एंड टू दोज हु राइज फ्रॉम बेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ऑफर मी प्रेयर्स एज यू रिसाइटेड. जिस तरह से हे गजेंद्र आपने मुझे प्रार्थना अर्पण की, अगर वही प्रार्थनाएं सुबह उठकर कोई भक्त मुझे अर्पण करता है तो वो मेरे धाम में चिरंतन निवास प्राप्त करेगा इस जीवन के अंत में. ऐसे भगवान ने प्रार्थना, भगवान ने वरदान दिया है. अभी सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा विस्तार में इन प्रार्थनाओं का जो फल है वो बताते हैं, उसका हम पढ़ेंगे क्योंकि प्रार्थना ये जो है कम से कम सुबह तो नहीं तो शाम तो पढ़ सकते ना. ओके ये प्रार्थना इस प्रकार से है, मैं पूरी तरह से पढ़ूंगा. परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप कर्मों से मुक्त होकर सुबह उठते ही स्नान वगैरह करके अपने मन को एकाग्र करके बड़े ध्यान से जो मेरे रूप को, इस सरोवर को, इस पर्वतों को, त्रिकुट पर्वत को, बगीचों को और सारी व्यवस्था को यहाँ की मेरे साथ याद करेगा, मेरे दिव्य धाम को याद करेगा, कौस्तुभ मणि श्रीवत्स कौमुदकी सुदर्शन पंचजन्य, मेरे गरुड़ को याद करेगा, मेरे शेष नाग को याद करेगा, मेरे भक्तों को याद करेगा और साथ साथ जो प्रार्थनाएं गजेंद्र ने अर्पण की उसको याद करेगा, वो इस जीवन में पाप से मुक्त हो जाएगा. और सुखदेव गोस्वामी वरदान देते हैं कि मैंने अभी आपको, मतलब परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, हे परीक्षित मैंने आपको गजेंद्र की कथा बताई किस तरह से प्रेम से गजेंद्र को भगवान ने मुक्त कर दिया. हे कुरुवंशराज, जो इस गजेंद्र मोक्ष के वर्णन को सुनते हैं वो दिव्य लोक को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं. केवल शुद्ध मन से, प्रामाणिक मन से, एकाग्र मन से इस वर्णन को कोई सुनता है तो उसको भक्त की पदवी प्राप्त हो जाती है. हम अपने आप को भक्त कहते हैं, अरे ये डिवोटी, यस आई एम अ डिवोटी, लेकिन इतना साधारण संज्ञा नहीं है, इट्स नॉट अ सिंपल टर्मिनोलॉजी. भक्त की व्याख्या क्या है? जो भगवान से विभक्त नहीं है वो भक्त कहा गया है. मतलब जो कभी भी किसी भी क्षण भगवान से अलग नहीं है उसी को भक्त कहा गया है. जिसका जीवन, समय, मन, बुद्धि, हर क्षण के हर कार्य भगवान के सेवा में रत है उसको भक्त कह सकते हैं. जो शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा में अपने आप को लीन कर चुका है वही भक्त है. लेकिन कहा गया है कि ऐसा न होने पर भी केवल ये वर्णन सुनने से हम भक्त की पदवी प्राप्त करेंगे. और कलयुग के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे. कलयुग का प्रभाव क्या है? कलह और दंभ, बाकी बहुत सारे लंबे प्रभाव हैं उनके. हाँ, प्रायेण अल्पायुषा कलावस्मिन् युगे जनः मंदस मंद मतयो मंद भाग्य विप्रदुतः. मतलब हमारा जीवन बहुत कम है कलयुग में. प्रायेण अल्पायुषा कलावस्मिन् युगे जना, कलयुग में सभी लोगों का जीवन बहुत अल्प है, उनको याद नहीं रहता कुछ, स्मृति बहुत कम रहती है उनकी. हाँ, उनका भाग्य बहुत मंद है, मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट. सुमंद मतयो, बुद्धि बहुत क्षीण है उनकी. सुमंद मतयो मंद भाग्य, और युपद्रुतः ही उपद्रुतः, मतलब हमेशा त्रस्त रहते हैं, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड. दिस इज द सिम्टम ऑफ कलयुग. और प्रधान क्या परिणाम है कलयुग का? हमेशा झगड़े में व्यस्त रहते हैं, हमेशा. देखिए आप, कुछ ना कुछ कलह चलते रहता है परिवार में, परिवार के बाहर, नेबरहुड में, क्या कहते हैं, समाज में, जाति में, देश में, राज्य में, प्रदेश में, हर लेवल पर झगड़ा चलते रहता है. पेपर खोल के देखो क्या पढ़ेंगे आप, झगड़ा ही झगड़ा. ये मूर्छा निकल रहा है, ये मूर्छा निकल रहा है, यहाँ मुठभेड़ हो रही है, मारामारी हो रही है, यहाँ खून खराब है, पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, बेटे ने पति का खून किया, हाँ ये पैसा लूट के चला गया. हर समय झगड़ा, ये कलयुग का लक्षण है. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट लक्षण ये है दम्भ, यानी कलयुग के लोग जो है ना, जो हम नहीं है वो है ऐसा दिखाने में बहुत एक्सपर्ट है. ऑलवेज शोइंग वॉट दे आर नॉट. जो जिस स्थिति में है, पतित अवस्था में है, लेकिन दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं. चोर भी बताएगा मैं कितना प्रामाणिक हूँ. जो सुंदर नहीं है वो सुंदर दिखाने का प्रयास करेगा. जिस पास अधिकार नहीं है वो बहुत अधिकार है ऐसे जताने का कोशिश करेगा. जो बिल्कुल हमारे पास नहीं है वही दिखाने का कोशिश करेगा आदमी, बिकॉज दे वॉन्ट इट. एंड Even if they don't have it, they try to show that they have it. इसको कहते हैं दंभ. और ये दंभ जो है ये भगवान को बड़ा नापसंद है. आप झगड़ालू हैं चलो भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन दंभ अगर करेंगे ना, क्योंकि भगवान के सामने अगर हम दंभ मतलब जो झूठ मूठ का दिखाएंगे तो उनको गुस्सा आता है कि तुम्हारे पास है ही नहीं ये, और जो भी है मेरा दिया हुआ है, और जो नहीं है तो वही तुम उसको दिखाने का कोशिश कर रहे हो. किसको इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहे हो? इट इज़ मी हु इज़ द गिवर ऑफ एवरीबडी एवरीथिंग. सब कुछ मैं देता हूँ आपको. आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावना, आपकी शक्ति सब मेरे तरफ से आई हुई है. इंसान का बल मैं हूँ, उसे भगवान कहते हैं. शक्तिमान का शक्ति मैं हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ, सौंदर्यवान का सौंदर्य मैं हूँ, विद्यावान की विद्या मैं हूँ. हाँ, सब कुछ मेरा दिया हुआ है. इसलिए कलयुग का प्रभाव से मुक्त होना है तो भगवान का नाम जप करना पड़ेगा. और जब भगवान का नाम का जप करेंगे तो धीरे धीरे झगड़ालू प्रवृत्ति कम कम होते हुए नजर आएगी, और जो दाम्भिकता है, जो हम दिखावे का प्रयास करते हैं, वो भी कम कम होते जाएगा, और प्रामाणिकता बढ़ने लगेगी, दाम्भिकता कम होती जाएगी. तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जब ये हम वर्णन सुनेंगे श्रद्धा से, हाँ, मुमुक्षु बनकर प्रामाणिकता से, तब हम कलयुग के परिणाम से, प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे. और एक बहुत ही अजीब सा वरदान दिया है, इसको कहते हैं फलश्रुति. फलश्रुति का मतलब क्या है कि कोई भी कथा होने के बाद में उस कथा सुनने का फल क्या है ये कथाकार बता देते हैं. अब ये जो फलश्रुति है इस प्रकार की होती है, भौतिक फलश्रुति, कि ये सुनने से बच्चा हो जाएगा, जिसको पुत्र नहीं है पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, जो बीमार है वो ठीक हो जाएगा, जो धनवान नहीं है वो धनवान हो जाएगा. ये सब जो है ये सुखदेव जी महाराज इसलिए बताते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सुखदेव जी जहाँ पर कथा कर रहे थे वहाँ पर हजारों संत लोग बैठे थे, और सब संत लोग एक स्तर में नहीं थे. कुछ योगी थे, कुछ ध्यानी थे, कुछ कर्मकांडी थे, कुछ तपस्वी थे, हाँ, कुछ भक्त थे, कुछ परमहंस थे. हर प्रकार के भक्त वहाँ पर उपस्थित थे, और उन्होंने सबके लिए कुछ कुछ दिया है. टू अट्रैक्ट एवरीबडी टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा इज ऑफरिंग एवरीबडी एवरीथिंग वॉट एवर दे डिजर्व एंड दे कैन अप्रिशिएट. तो उन लोगों का मन, जिनका मन शुद्ध भक्ति की ओर आकर्षित नहीं है, उनको कम से कम फल की ओर आकर्षित करने के लिए वो भागवत की ओर उनका मन खींचने का प्रयास कर रहे हैं. क्योंकि जितने वेद हैं, जितने भी ज्ञान दिया गया है, हमने कल पढ़ा था व्यासदेव की कथा में, भगवान स्वयं व्यासदेव को बता रहे हैं कि तुमने भागवत के अलावा जो भी कुछ लिखा है वो केवल बंधन में डालने वाला है, एक तरह से यूजलेस है. और उस शास्त्र में जिनका मन लगा हुआ है, इसमें वो बिल्कुल मशगूल है, उनको वहां से अगर ऊपर उठाना है और भागवत की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना है तो उनको उसकी ओर आकर्षित करने कुछ फल भी देना होगा. आप बच्चे को कहेंगे कि आप जब करो, चाहे नहीं मुझे खेलना है, आप बोलेंगे पांच माला करोगे ना तो आपको पांच चॉकलेट देंगे, तो फिर वो पांच माला करेगा शायद, पांच चॉकलेट के इच्छा से. या आपको क्रिकेट के बैट लेके आएंगे, बहुत बढ़िया, तेंदुलकर के साइन भी लेके आएंगे उसके ऊपर, तो बच्चा पढ़ाई करेगा अच्छी तरह से, जब भी करेगा, मतलब काम कर रहा है वो भगवान की सेवा में, उनका नाम जप का ही, लेकिन वो करने के लिए मोटिवेशन जो है वो भौतिक दिया गया है. इसलिए यहाँ पर अनोखा सा क्या फल दिया है कि जो ये कथा सुनेंगे वो बुरे सपनों से मुक्त हो जाएंगे. बाय द वे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. हाँ, मैं भी इस प्रॉब्लम से बहुत ग्रस्त था बहुत पहले, अभी अभी मुक्त हो गया हूँ. बचपन से ऐसे भयंकर सपने मुझे आते थे. हाँ, सपने में तो क्या होता है ना, सत्य तो है नहीं वो, लेकिन उस समय वो सत्य रहता है. पसीना आ रहा है, आंखों से अश्रु आ रहे हैं, कांप रहे हैं, सुबह उठ के हंस रहे हैं, अरे क्यों मैं रात को रो रहा था, लेकिन रात के समय वो सत्य रहता है. जो सत्य है नहीं उसकी भी सफरिंग होती रहती है सपने की वजह से. तो सपने एक बहुत लोगों की बड़ी समस्या है. देखो टू साइकेट्रिस्ट, देखो टू डॉक्टर, कि स्वप्न कैसे रद्द करें. और ऐसे कहा गया है स्वप्न भी हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है. ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पुराने सारे बुरे कर्म जो है वो फल के स्वरूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सुप्त मन में छुपे रहते हैं. और जब रात को हम सोते हैं तो ये कभी भी सोचा नहीं था हमने जीवन में ऐसे सपने रात को आते, जैसे कि हम अपनी माता को गला घोट के मार रहे हैं, हाँ, भाई को गोली मार रहे हैं, ऐसा कुछ. इतना प्रेम करते हैं माता भाई के ऊपर, लेकिन सपने में क्या आता है कि उनका ही खून कर दें. तो ये सब पुराने जन्म के संचित हैं. और अगर ऐसे पुराने जन्मों के बुरे बुरे घटनाओं के फल के प्रभाव से अगर हमको मुक्त होना है तो इस जन्म में भगवान की भक्ति करनी होगी। क्योंकि ऐसे कहा गया, रिसेंटली मैंने एक योगी से मुलाकात की, उसने एक बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर हम मन से ध्यान लगाकर एकाग्रता से अगर भगवान के नाम की साधना बार बार लगातार करते रहेंगे तो उस साधना का प्रभाव सबकॉन्शियस माइंड पे होगा। जब ऊपर ऊपर से यहाँ वहाँ देखते हुए सोचते हुए भोग का आनंद लेते हुए अगर हम फोन ले रहे हैं, मोबाइल पे किससे बात कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कोई पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ करते हुए जब करते हैं लोग, ड्राइविंग करते हुए जब करते हैं ऐसा जब करेंगे तो केवल ऊपर ऊपर मन पर उसका परिणाम होगा। लेकिन ध्यानपूर्वक एकाग्रता से जब करेंगे तो उसका परिणाम सबकॉन्शियस माइंड पे होगा। और जब उसका परिणाम सबकॉन्शियस माइंड पे होगा तभी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इम्प्रेशंस है पुराने जन्मों के वो नष्ट होते जाएंगे। तो अभी इतने साल थोड़ा बहुत प्रयास करने के बाद में अभी ये स्वप्न जो है नगण्य जैसे हो गए हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऐसा कोई बुक में पढ़कर श्लोक नहीं बता रहे आपको। ये जीवन का अनुभव जो भगवान की भक्ति में आता है, उसका क्रोध की स्थिति, उसकी विचलित स्थिति, उसकी भोग अवस्था, उसकी भोग की इच्छाएं, दुनियादारी से लगाव, आसक्तियां, सब कम कम होते हुए नजर आती है। ये अनुभव करने की बात है। हम तो प्रवचन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन भक्ति जो है ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है। उसमें 10% आप सुनेंगे और 90% आपको अप्लाई करना है उसको जो सुना है। केवल कथा सुन के मनोरंजन नहीं करना है, जो कथा में सुना है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। टेक होम मैसेज होना चाहिए उसके अंदर, अपने लिए क्या संदेश है इसके लिए, वो समझ कर उसको जीवन में उतारना चाहिए। तो तब वो उस भावना से करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर जो गंदगी है उसको साफ करेगा। और उसमें से किसी की एक वाइट गाड़ी, सफ़ेद रंग की गाड़ी बाहर है, ज़रा ट्रैफिक जैम हो गया। एनीवेज, तो यहाँ पर वरदान दिया है कि उसके बुरे सपने नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सुबह उठने पर जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसे इस गजेंद्र मोक्ष के वर्णन को पढ़ना चाहिए एकाग्र मन से, ताकि बुरे सपनों के जो प्रभाव है उससे वो मुक्त हो जाएगा। तो भगवान ने भी वरदान दिया है, भगवान ने तो बहुत सुंदर वरदान दिया है। इस कथा में जो प्रार्थनाएं गजेंद्र ने अर्पण की, वो आप प्रार्थना करेंगे तो पाप मुक्त होकर भगवान के धाम में चले जाएंगे। बोलो गजेंद्र मोक्ष भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? आई एम जस्ट लुकिंग, आई हैव मार्क्ड एवरीथिंग। श्लोकस, यस यस यस, उसको हम लोग भाई करेंगे यहाँ पर प्रार्थना, एक बार करेंगे प्रार्थना उसकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात प्रार्थना करने के पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज जी, इन्होंने इस कथा पर कई प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि ये जो मगरमच्छ का मुख है ये भौतिक जीवन की तरह है, इसमें बहुत नुकीले दांत होते हैं, हाँ, और कभी कभी दो दांतों के बीच थोड़ी जगह होती है। अगर आप उस जगह पर होंगे तो आपको लगेगा कि मैं कितना सुरक्षित हूँ, लेकिन चाहे आप दो दांतों के बीच में सुरक्षित आपको लगता होगा, फिर भी आप मगरमच्छ के मुँह में हैं, ये बोलना नहीं, हाँ। इस भौतिक दुनिया में हम सब लोग मौत के मुँह में जीवन जी रहे हैं, कभी दांतों के नुकीलेपन का दर्द होता है, कभी उससे दूर रहते हैं, कभी जिह्वा पर रहेंगे, दांतों के बीच में रहेंगे तो कुछ दर्द नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली वी आर इन द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल ऑफ डेथ। और उससे मुक्त होना है तो मुकुंद को ही पुकारना होगा और किसी को नहीं पुकार सकते। कितना भी लगेगा कि अभी हमको कितना सुख है, ऐश्वर्य है, हाँ, इज्जत है, नाम है, फिर भी हमको याद रहना चाहिए कि हम सब लोग मौत के मुँह में हैं। इट्स जस्ट अपरेंट इल्यूजरी फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, हाँ, लगता है हमको केवल हम सुखी हैं, लेकिन हम स्टेडी गति से, निश्चित गति से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमें भ्रम में रहना नहीं चाहिए कि हम लोग अभी विद्या प्राप्त कर चुके हैं, धन प्राप्त कर चुके हैं, सुख मिल रहा है, तो क्या जरूरत है भगवान को पुकारने का। भगवान को पुकारने की जरूरत है क्योंकि हमें इस वास्तव से अवगत रहना चाहिए कि हर वक्त समय हमसे हमारा सब कुछ छीना जा रहा है, छीनते जा रहा है। जो भी हम अपना समझते हैं वो सब कुछ समय हमसे लेते जा रहा है, और एक दिन एक ही घाव में सब कुछ खत्म करके मृत्यु की मुंह में हम चले जाएंगे। इसलिए जब हमको ये अनुभूति होती है उसी समय से भगवान को पुकारना आरंभ करना चाहिए। तब हम जैसे भगवान ने हाथ से गजेंद्र को बाहर निकाला, वैसे भगवान हमें मौत के मुख से बाहर निकालेंगे और अपने धाम में लेके जाएंगे। हरे कृष्ण। तो ये प्रार्थना अभी आ रही है, एक मिनट रुको जरा। ओके, तो यहाँ पर गजेंद्र अपनी प्रार्थना आरंभ करते हैं। तो कैसे करना है आपके पास तो ये नहीं, मेरे पास ही खाली है, तो मैं केवल उसको आप सुनिए सब लोग। हाँ, यक्षनेशो बलिनो कांत को रगात प्रचंड वेगात विदावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भ्या मृत्यु प्रधावतरण तमीमहि। इसके आगे ओम नमो भगवते तस्मै यत एताचितात्मकं पुरुषायादि विजाय परेशाया विधीमहि। मैं आपको अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ हे वसुदेव। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। आपके वजह से ये शरीर जो है वो आध्यात्मिक रूप में काम करता है, और इसीलिए आप सभी के मूल हो, आप पूजनीय हो, क्योंकि आपने ब्रह्म शिव जैसे व्यक्तियों को जन्म दिया है और आप हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हो। आगे कहते हैं, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यम इदं स्वयं योस्मात् परमाश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं। तो परम पूज्य भगवान है वो ऐसा एक स्थिति है जिसमें सब ब्रह्मांड क्या कहते हैं उसको रेस्ट रहता है, मतलब स्थित रहता है। हाँ, सभी जो अस्तित्व है, निर्माण है, वो भगवान के ऊपर स्थित है, और भगवान वो व्यक्ति है जिन्होंने इस सब ब्रह्मांड को निर्माण किया है, वही इस वैश्विक निर्मिति के निर्माण करता है, और वही उसके कारण और वही उसका फल भी है। मैं अपने आप को भगवान परम भगवान से शरणागति प्राप्त करता हूँ जो सब कुछ देने में समर्थ हैं। यस यस्वात्मनिदं निजमाया परपितं क्वचित विभातं क्वचित तत्तिरोहितं अविद्यद्रुक्साक्षुभ्यं तदिक्षते स आत्ममूलो वतु मात्परात्परः। परम पूज्य भगवान अपनी शक्ति को विस्तारित करके इस भौतिक दुनिया को दृश्य रूप में रखते हैं और पुनः उसको अदृश्य भी कर देते हैं, मतलब निर्माण करते हैं और प्रलय भी करते हैं। वो इसका दिव्य कारण भी है और दिव्य फल भी है, वो दृष्टा है और साक्षी भी है, सभी अवस्थाओं में वो दृष्टा और साक्षी रहते हैं। इस तरह से भगवान सब वस्तुओं से दिव्य हैं, मतलब ट्रांसेंडेंटल हैं। ऐसे परम भगवान मुझे रक्षा अर्पण करें, मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत वमितेषु कुरुत्स्नो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तसासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभु। समय के प्रभाव से, कालांतर में समय के प्रभाव से जो कारण के चिन्ह हैं और जो परिणाम कारक चिन्ह हैं इस भौतिक दुनिया में, उनकी कृपा से प्रकट होते हैं, और वो कभी कभी लोकों के रूप में, दिक्पालकों के रूप में प्रकट होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पर विनाश होता है, और इस अंधकार के ऊपर परम भगवान स्थित है। ऐसे परम भगवान का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। न यस्य देवा ऋषया पदम विदु जंतु पुनः कोरहति गंतुमीरतुम यथा नटस्या कृतिभिर विचेष्टतो दुरत्यया अनुक्रमणा समावतु। जैसे कोई होता है कलाकार, वो अपने आप को अलग अलग वेशभूषा से सुशोभित करता है, नृत्य करता है, नाटक करता है, लेकिन सभा में जो बैठे हैं उनको उसका मूल स्वरूप नजर नहीं आता है, क्योंकि वो अपने आप को भेष बदल के प्रस्तुत कर रहा है। उसी तरह से भगवान जो है वो सबके समझ में नहीं आते हैं, यहाँ तक कि देवताओं के और साधुओं के समझ में भी नहीं आते हैं। उनकी लीला अगाध है, उनको कोई भी जीव, साधारण जीव समझ नहीं सकता है। देवता, साधु और बुद्धिमान व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप को समझ नहीं सकते हैं, ना उनको शब्दों से उनका वर्णन कर सकते हैं। ऐसे अवर्णनीय भगवान को मैं रक्षा के लिए पुकारता हूं। दिद्रुक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनया सुसादवः चरन्ति लोक व्रतत्तम व्रणम वने भूतात्म भूताः सुरदः समे गतिः। जो विरक्त लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो सब जीवों को समान देखते हैं, जो सबके प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, और जो लोग बड़े शुद्ध भाव से अपनी भक्ति चलाते हैं, अपने ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास की प्रतिज्ञाओं को पालन करते हैं, किस लिए करते हैं? ये सब कुछ करते हैं सर्व पवित्र, सर्व पावन भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए। ऐसे परम भगवान को मैं अपना लक्ष्य बनाना चाहता हूँ। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमाययात् तानि अनुकाल मृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायो रूपर रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। परम पुरुषोत्तम भगवान, इनका भौतिक जन्म नहीं होता, इनके गतिविधियां, नाम, रूप, गुण और सब वस्तुएं दिव्य हैं। टू फुलफिल द पर्पज फॉर विच द मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस भौतिक दुनिया को प्रकट करने का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए वो मनुष्य रूप में आते हैं, जैसे राम और कृष्ण, और अपने मूल स्वरूप में अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। उनके अंदर अनंत शक्तियां हैं और अलग अलग विविध रूपों में वो भौतिक दोषों से मुक्त रहते हुए दिव्य कार्य करते हैं। ऐसे परब्रह्म को मैं वंदन करता हूँ। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीराम विदुराय मनश्चेत सामपि। मैं परम भगवान श्री कृष्ण को आदर पूर्वक वंदन करता हूँ, जो स्वयं प्रकाशित परमात्मा हैं, जो सब के हृदय में साक्षी के रूप में निवास करते हैं, जो हर जीव को अपने ज्ञान से विभूषित करते हैं, और वो मन के, शब्दों के और किसी भी कसरतों से प्राप्त नहीं किए जा सकते। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्य नाथाय निर्वाण सुख संविदे। परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान केवल शुद्ध भक्तों द्वारा समझे जा सकते हैं, जो शुद्ध भक्त भक्तियोग के द्वारा उनको समझने का प्रयास करते हैं। भक्तियोग ऐसा एक ही मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान को कुछ कुछ समझ सकते हैं, और भगवान जो निर्मल आनंद है उसको भक्तों को देने वाले हैं। भगवान दिव्य लोक के स्वामी हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साभ्याय नमो ज्ञान घनाय च। मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, जो सब जगह छाए हुए हैं, जो नरसिंह देव के रूप में बहुत भयंकर नजर आते हैं, जो वराह देव के रूप में भी भयंकर नजर आते हैं, जो दत्तात्रेय के रूप में भी आते हैं, जो भगवान बुद्ध के रूप में भी आते हैं और अलग अलग रूपों में अवतार लेते रहते हैं। ऐसे दिव्य भगवान को मैं आदरपूर्वक वंदन करता हूँ, जिनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, लेकिन वो तीन गुणों को भौतिक दुनिया में प्रकट करते हैं, जैसे कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मैं ऐसे दिव्य भगवान को, उनके तेज को प्रणाम करता हूँ। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। मैं हे भगवान आपको वंदन करता हूँ, जो परमात्मा हैं, जो सब चीज़ों के, सब वस्तुओं के अधीक्षक हैं, जो सब जो कुछ होता है उसके साक्षी हैं, जो भी घटता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष हैं, आप भौतिक दुनिया के भौतिक निर्माण के निर्माण करता है, आप इसके मालिक हैं, मेरे शरीर के भी मालिक आप हैं, और फिर भी इसलिए आप परिपूर्ण हैं, मैं आपको वंदन करता हूँ। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। हे भगवन, आप सभी इंद्रियों को देखने वाले दृष्टा हो, आपके कृपा के बिना इस दुनिया के संशयों को हम नाश नहीं कर सकते, आपकी कृपा के बिना ये संशय नष्ट नहीं हो सकते। ये भौतिक जगत ये आपकी एक छाया है, वास्तविक रूप से सच देखा जाए तो इस दुनिया को जो वास्तव समझता है वो मूर्ख व्यक्ति है, ये दुनिया केवल आपकी एक झलक है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मागनाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। हे भगवन, आप सभी कारणों के कारण हैं, लेकिन आप स्वयं का कारण कोई नहीं है, इसलिए आप सबसे अद्भुत जीव हैं। मैं आपको बार बार वंदन करता हूँ और आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो वैदिक ज्ञान का आश्रय है, वैदिक ज्ञान के निर्माण करता है, और परंपरा जो उत्पन्न होती है गुरु शिष्य परंपरा, उसके भी उद्गाता आप ही हो, क्योंकि आप मुक्ति देने वाले हो, इसलिए आप ही सभी भक्तों के वैष्णवों के आश्रय हो, इसलिए ऐसे भक्तों के आश्रय को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुणार्णा छिन्न चिदुष्मपाय तत्क्षोभ विस्फुर्त जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जिकताम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। जैसे लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, आप और आपका दिव्य ज्ञान भौतिक गुणों के माध्यम से प्रकट होता है, आपका मन फिर भी ऐसे भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं आता है, आप आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े प्रगत हो और आप किसी भी भौतिक दुनिया के प्रभाव में नहीं आते हो, इसलिए क्योंकि प्रगत भक्त जो होते हैं वो दिव्य होते हैं, वो आपको शुद्ध मन से आपका दर्शन कर सकते हैं, ऐसे आपको मैं वंदन करता हूँ। मादृक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललयाय स्वांशेन सर्व तनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग दृशे भगवते बृहते नमस्ते। मैं एक जानवर हूँ और मैं आपको शरण में आया हूँ, जो आप परम मुक्त हो, आप ही मुझे इस दुखी दुखी और भयंकर अवस्था से मुक्त कर सकते हो, वास्तविक रूप से आप बड़े दयालु हो, इसलिए आप मुझे मुक्त कर सकते हो, आप परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान हो, आप सभी जीवों के अंदर विराजमान हो, इसलिए आपको दिव्य ज्ञान से समझा जा सकता है, आप अनंत हो, मैं आपको बार बार वंदन करता हूँ। हे भगवान, आप भौतिक गुणों से मुक्त हो, आपका चिंतन करने से आपका दर्शन होता है। जो लोग भौतिक दुनिया में बहुत आसक्त हैं, अपने घर से, परिवार से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, धन से, नौकरों से और सारे भोग वस्तुओं से, उनको आपको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आप परम भगवान हो, आप किसी भी गुण से दोषित नहीं हो, आप सारे साक्षात्कार के उगम हो, आप परम नियंत्रक हो, आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। इस तरह से गजेंद्र ने भगवान की पूजना की और आखिर में जब भगवान को उन्होंने देखा आकाश से, तो तुरंत कमल दल निकाल के आखिरी बार कहा कि मैं आपको शरण आ रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो कोई प्रश्न है किसी के आज की कथा पर? आपको कुछ प्रश्न था केजल, कल की कथा में कोई प्रश्न था? यस माता जी। Yes. वो नष्ट हो जाती है, बिल्कुल सही बात, यही भगवान के स्पर्श का महत्व है। वो स्पर्श प्रत्यक्ष हाथ से हो या नाम के ध्वनि से हो या चक्र से हो या उनके दृष्टिपात से हो, जैसे भी भगवान का स्पर्श होता है, हम सब भौतिक वेदना से, भौतिक पापों के फल से मुक्त हो जाते हैं। यस माता जी। मैंने उदाहरण दिया आपको। बचपन में हमारी चेतना जो होती है ना वो अविकसित होती है, ज़्यादा करके खेल खेल में मन रहता है, वही चेतना आगे कायम नहीं रहती है, आगे आदमी आगे प्रगल्भ हो जाता है केवल। नहीं नहीं हैबिट का ऐसा है कि उस अवस्था में आप वो करते हो, थोड़ा बड़ा हो गया तो वही नुस्खे काम नहीं आते, दूसरे नुस्खे काम आते हैं। जब सब प्रगल्भ हो जाता है तो ही बिकम्स मैच्योर, तो आपको वो सही भी ज्ञान भी देना है। केवल छोटी अवस्था में जब ज्ञान कम होता है, बुद्धि अविकसित होती है, तब उसको प्रलोभन दिखा के अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, भगवान की ओर उसको लेके जा रहे हो। यू आर राइट, हमको वही नुस्खे कंटिन्यू नहीं करने चाहिए आगे भी जाकर, नहीं तो भक्ति जो है ना वो सकाम हो जाएगी, लाभ के लिए भक्ति करेंगे हम। लेकिन समय के अनुसार स्थिति को देखते हुए जो काम करेगा वो करना चाहिए। जैसे मेरे घर में मैंने कभी कभी ऐसा किया नहीं, मैं ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो करते हैं। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, सो हम लोग यहाँ पर अपने आज की कथा समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग ने बड़े ध्यान से कथा को सुना, और मेरे मन में निश्चित विश्वास है क्योंकि आपने ध्यान से कथा को सुना श्रीमद् भागवत सुखदेव महाराज के वर्णन के अनुसार, तो निश्चित ही आप सभी वेदनाओं से, पीड़ों से और भौतिक इच्छाओं के मुक्त हो जाओगे और जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो जाओगे। हरे कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान की जय।